स्कॉट एंटरप्राइजेस से लौटते वक्त इशिका का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और इस वक्त वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर थी। बाहर से देखने में यही लग रहा था कि इशिका को कोई ज्यादा बड़ी चोट नहीं लगी है, लेकिन फिर भी डॉक्टर को अंदर समय लग रहा था। ये देखकर अभिमन्यु काफी घबरा गया था। ऊपर से पृथ्वी के अलावा उसके पास कोई नहीं था। पृथ्वी ने राधिका और केशव को कॉल करके इशिका के एक्सीडेंट के बारे में बता दिया था। सुबह होने तक वो वहां पर पहुंच गए। हालांकि इशिका की प्रारंभिक सर्जरी और बाकी चेकअप हो चुके थे, लेकिन फिर भी डॉक्टर उसे इंटेंसिव ऑब्जर्वेशन में रख रहे थे, जिसकी वजह से अभिमन्यु को अभी तक उससे मिलने नहीं दिया गया था। अभिमन्यु आईसीयू के बाहर खड़ा बाहर से ही इशिका को अंदर की तरफ देख रहा था। केशव और राधिका वहां पहुंचे तब अभिमन्यु के पास जाने से पहले राधिका ने कहा, मैं जानती हूं इशिका की वजह से आप अभिमन्यु से गुस्सा है, पर फिलहाल उसे कुछ मत कहिएगा। देखिए वो खुद कितना परेशान नजर आ रहा है। देखकर साफ पता चल रहा है कि पूरी रात से यहीं पर खड़ा होगा। इसकी वजह से मेरी बेटी बार बार मुसीबत में पड़ जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद तुम क्या चाहती हो कि मैं इससे प्यार से बात करूं? दुआ करना कि इस मामले में राजवंश फैमिली का कोई शख्स शामिल न हो, वरना अभिमन्यु को इशिका या अपने परिवार में से किसी एक को चुनना होगा, केशव ने सख्ती से जवाब दिया। केशव की शर्त आज भी यही थी कि अगर इशिका किसी तरह की मुसीबत में पड़ती है तो अभिमन्यु को राजवंश फैमिली को छोड़कर सिंघानिया फैमिली के पास आना होगा। राधिका ने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन केशव सुनने को तैयार तक नहीं था। वो दोनों अभिमन्यु के पास पहुंचे। अभिमन्यु ने एक नज़र उनकी तरफ देखा। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थीं। अभिमन्यु की हालत देखकर केशव को डांटने का भी मन नहीं किया। उन्होंने नरमी से पूछा, डॉक्टर ने कुछ बताया? वो बोल रहे हैं कि उन्हें कुछ रिपोर्टों के आने का इंतज़ार है। कभी कहते हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, अगर वो ठीक हैं तो मुझे उससे मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं, अभिमन्यु ने भारी आवाज़ में कहा। राधिका अभिमन्यु के पास आई और उसके हाथ को सहलाते हुए प्यार से बोली, थोड़ा समय दो, हो सकता है डॉक्टर अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हों, तुम्हें थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। मैं और केशव यहां इशिका के पास रुकते हैं। नहीं, मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, अभिमन्यु ने जवाब दिया। राधिका ने केशव की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में अभिमन्यु को समझाने के लिए कहा। केशव ने ना में सिर हिला दिया था। ऐसे मौके में अभिमन्यु को घर जाने के लिए मनाना सही भी नहीं था। अगर उसकी जगह वो भी होते तो इशिका को ऐसी हालत में छोड़कर आराम नहीं करते। क्या तुमने डॉक्टर से बात करने की कोशिश की? केशव ने पूछा। जिस तरह से अभिमन्यु एक पल के लिए भी इशिका से नज़र हटाने के लिए तैयार नहीं था, उससे उन्हें यही लग रहा था कि इशिका को छोड़कर अभिमन्यु डॉक्टर तक के पास नहीं गया होगा। अभिमन्यु ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। पृथ्वी वहीं पर मौजूद था। वो बोला, जब मिसेज राजवंश को आईसीयू में शिफ्ट कर रहे थे तब डॉक्टर से बात हुई थी। उसके अलावा मिस्टर राजवंश यहाँ से हटे तक नहीं है। मुझे लगता है आपको बात कर लेनी चाहिए मिस्टर सिंघानिया। ठीक है, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। राधिका, तुम अभिमन्यु के पास रुको, केशव ने राधिका की तरफ देखकर कहा और फिर वहां से डॉक्टर के केबिन में चले गए थे। नर्स के जरिए उन्हें इशिका के अटेंडिंग डॉक्टर के बारे में पता चला। जब केशव उनसे मिलने पहुंचे तब डॉक्टर ने कहा, थैंक गॉड पेशेंट के परिवार से कोई बात करने के लिए तैयार है, वरना उनके पति को मैंने उनकी मेडिकल कंडीशन समझाने के लिए समय मांगा था, लेकिन वो तो उन्हें छोड़ने के लिए तैयार तक नहीं है। आपको उसकी हालत समझनी चाहिए डॉक्टर। खैर छोड़िए, बताइए कि मेरी बेटी कब तक ठीक होगी, केशव बोला और वहां डॉक्टर के सामने जाकर बैठ गया था। देखने में ये सब जितना सरल नजर आ रहा है, दरअसल ये उतना ही जटिल है सर। इशिका राजवंश के मस्तिष्क में अंदरूनी चोटें आई हैं। दिमाग के उस हिस्से में चोट लगी है जहां पर हमारा मस्तिष्क पुरानी यादों का डेटा रखता है। उन्हें होश में आने में 3 से 4 दिन का समय लगेगा और फिर ही हम कुछ कह सकते हैं। उम्मीद है कि इस चोट से उनकी यादों पर कोई असर न हुआ हो, डॉक्टर ने बताया और फिर इशिका के ब्रेन स्कैनिंग को उनके सामने रख दिया था। उनकी बात सुनकर केशव को झटका सा लगा। वो जल्दी से आक्रामक आवाज में होकर बोला, मतलब क्या है आपके कहने का डॉक्टर, मेरी बेटी की याददाश्त चली जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता है, वो बहुत बुद्धिमान है, ऐसे तो उसने जो भी हासिल किया है वो सब कुछ भूल जाएगी। मैं अभी किसी नतीजे पर नहीं आ रहा हूँ, रिपोर्टों में कुछ खास नजर नहीं आ रहा है, तभी बस हमें उनके होश में आने का इंतजार है, डॉक्टर ने बताया। तो क्या हम उनसे मिल सकते हैं, केशव ने पूछा। कुछ रिपोर्टें शाम तक आ जाएंगी, उसके बाद आपको मिलने दिया जाएगा, डॉक्टर ने जवाब दिया। डॉक्टर से मिलने के बाद केशव अभिमन्यु के पास वापस जाने लगा। डॉक्टर ने जो भी हेल्थ रिपोर्ट दी थी वो कुछ खास अच्छी नहीं थी। हाँ, राहत की बात ये थी कि इशिका को ज्यादा चोट नहीं लगी थी, पर अब उन्हें उसके होश में आने का इंतजार करना था। केशव अभिमन्यु के पास गया। राधिका ने जैसे तैसे समझाकर उसे वहां वेटिंग एरिया के सोफे पर बिठा दिया था। पृथ्वी अभिमन्यु के लिए कॉफी लेकर आया था, जो राधिका की जिद करने पर उसे मजबूरी में पीनी पड़ रही थी। केशव को देखते ही अभिमन्यु ने जल्दी से उनकी तरफ देखा। क्या कहा डॉक्टर ने, वो ठीक है ना मिस्टर सिंघानिया, फिर वो मुझे मिलने के लिए क्यों नहीं जाने दे रहे? केशव को समझ नहीं आ रहा था कि वो इशिका की जानकारी अभिमन्यु को कैसे दे। कुछ पल रुकने के बाद उन्होंने मायूस आवाज में कहा, उन्होंने कहा है कि पहले उसका होश में आना जरूरी है, तभी कुछ कहा जा सकता है। क्या मतलब तभी कुछ कहा जा सकता है?
अगर वो ठीक से एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं तो मैं बाहर से डॉक्टर की टीम बुला लेता हूँ, अभिमन्यु ने परेशान होकर कहा। डॉक्टर ने बताया कि इशिका के दिमाग के उस हिस्से में चोट लगी है जहाँ हमारा दिमाग अपनी यादों को सहेज कर रखता है। ऐसे में उनका कहना है कि इशिका की याददाश्त जाने का खतरा है। वो निश्चित नहीं है, हो सकता है कि वो ठीक भी हो, बस होश में आने के बाद ही पता लग सकता है, केशव ने जवाब दिया। उन सबको केशव की बात सुनकर झटका सा लगा, खासकर अभिमन्यु को। अचानक ही एक अनजाने डर ने उसके दिल को घेर लिया था कि अगर इशिका उसे भूल जाएगी तो क्या होगा। फिलहाल तो उनके पास इशिका के होश में आने का इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ सुबह के करीब अभिमान को इशिका के एक्सीडेंट के बारे में पता चला तो वो सबको छोड़कर सीधा अभिमन्यु से मिलने अस्पताल चला गया था। इस बीच निशा घर पर अकेली थी। निशा अपने फ्लोर पर बैठकर हमेशा की तरह समय व्यतीत करने के लिए पेंटिंग कर रही थी। कैनवस पर वो अपने मन की उलझन को उतार देती तो उसे भी बहुत अच्छा लगता था। निशा के हाथ सधे हुए तरीके से कैनवस पर चल रहे थे लेकिन उसका दिमाग अभिमान में लगा हुआ था। वो मन ही मन बोली, अभिमान आजकल कुछ ज्यादा ही परेशान रहने लगा है, ऊपर से मेरी बीमारी की वजह से वो और भी बंद कर रह जाता है। न जाने उसे ये क्यों लगता है कि उसका अपना ही परिवार उसका दुश्मन है। कभी कभी लगता है कि मैं अपने बेटे की ठीक से परवरिश नहीं कर पाई। काश आकाश हमारे साथ होते तो आज अभिमन्यु एक अलग शख्स होता। राजवंश परिवार के लोगों के साथ उसके रिश्ते अच्छे होते। निशा अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी पीछे से एक आवाज आई जिसे सुनकर उसका ध्यान भटक गया था और उसकी पेंटिंग बिगड़ गई थी। तुम्हारी पेंटिंग में काफी ज्यादा सुधार आ गया है, लेकिन ऐसे काम करने के लिए खुद के दिमाग को फोकस करना जरूरी होता है।
निशा आज भी उस आवाज को भूली नहीं थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने जल्दी से पलट कर देखा तो आकाश उसके सामने खड़े हुए थे। निशा की आंखें आकाश को देखते ही डबडबाने लगी थीं। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूं, निशा ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा। उसने न जाने काफी बार इस तरह आकाश की आवाज सुनी थी और उसके इंतजार में बहुत बार उसे अपने पास आते देखा था, पर हर बार वो इसका भ्रम साबित होता। आज जब आकाश खुद उसकी आंखों के सामने आ गया था तब भी उसे ये सब कुछ एक सपना की तरह लग रहा था। जहां आकाश को देखकर निशा के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट और आंखों में नमी थी तो वहीं आकाश के चेहरे के भाव शांत थे। उसने कभी उसे दिल से प्यार नहीं किया था। आकाश तेज कदमों से चलकर आगे आया और उसने निशा के बाजू को पकड़कर उसे दबाते हुए कहा, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी, और तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा मेरी नहीं सुन रहा है। मेरे पीछे से तुमने उसके दिमाग में क्या सहर घोला है। अब तक निशा को सब कुछ एक हसीन सपने की तरह लग रहा था, लेकिन आकाश ने जो हरकत की थी उसके बाद निशा का वहम एक पल में टूट गया। वो आकाश ही था जो सच में उसके सामने खड़ा था। निशा के चेहरे पर वही डर के भाव उभर आए थे जो आकाश के पास होने पर होते थे। उसने नजरें नीचे की और हड़बड़ाते हुए अपनी सफाई में कहा, मैंने अपनी तरफ से उसका ध्यान रखने की पूरी कोशिश की थी। मेरा यकीन कीजिए, वो एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का है। अपने दम पर उसने बिजनेस को खड़ा किया और उसकी कंपनी भी टॉप पर है। वो सब तुम्हारी वजह से नहीं, मेरी वजह से है। मैं टैलेंटेड हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, जाहिर सी बात है कि मेरा बेटा भी लायक बनना ही था। लेकिन राजवंश फैमिली उसके खिलाफ क्यों है? क्या तुम्हारी इतनी भी हिम्मत नहीं कि तुम उसे सुरक्षित कर सको? वो उसे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं और उसे अपनी पत्नी से दूर क्यों रहना पड़ रहा है? तुम्हें देखकर साफ लग रहा है कि एक बार भी जाकर आशुतोष सिंघानिया से उनकी शादी के बारे में बात नहीं की होगी। तुम बेकार ही रहोगी, आकाश निशा को भला बुरा सुनाने लगा था। आकाश ने कभी अभिमान की परवरिश में ध्यान नहीं दिया था। आज जब वो इतने सालों बाद लौटकर आया था तब भी ऐसे ही जता रहा था जैसे सारी गलती निशा की रही हो। वैसे भी आकाश बहुत सेल्फिश था, उसे बस खुद से मतलब था। अगर अभिमान इतना टैलेंटेड नहीं होता तो उसे उसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती। निशा नज़र झुकाकर उसकी सारी बातें सुन रही थी। पहले भी यही होता था, आकाश को मजबूरी में निशा से शादी करनी पड़ी थी। इस बात का बदला वो उससे लेता था। निशा की आंखों में आंसू थे और वो सिसक रही थी। आकाश ने उसे चेतावनी भरी उंगली दिखाते हुए कहा, तुमसे कुछ नहीं हुआ लेकिन मैं ऐसे ही अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। कुछ दिनों के लिए यहां आया हूं। अभिमान और आशुतोष सिंघानिया की बेटी की शादी हो जाने के बाद मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। मैंने एक यकीन के साथ अपने बेटे को तुम्हारे पास छोड़ा था लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। आकाश उसे बुरी तरह डांट रहा था। इन सबके बीच निशा को ये तक पूछने का मौका नहीं मिला कि आकाश इतने सालों तक कहाँ था या अचानक वो वापस क्यों आ गया था। निशा के लिए यही काफी था कि आकाश अब अपने बेटे के बारे में सोच रहा था। उसने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और विश्वास के साथ कहा, मुझे पूरा यकीन है कि अभिमान आपके साथ और भी टैलेंटेड इंसान बनकर बाहर आएगा। वो बहुत खुश होगा,
उसने हमेशा से एक खुशहाल परिवार का सपना देखा था। मेरी बीमारी की वजह से मैं मानती हूँ कि मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, लेकिन वादा करती हूँ कि अब मैं हर कदम पर आपका साथ निभाऊंगी। बोलते हुए निशा ने आकाश का हाथ पकड़ लिया था, जिसे आकाश ने बहुत बुरी तरह से झटक कर दूर कर दिया था। किसी गलतफहमी में मत रहना कि हमारी परफेक्ट लाइफ में तुम्हारी कोई जगह है। हाँ, कुछ करना चाहती हो तो अभिमान को बिना किसी नाटक के मेरे साथ चलने के लिए मना लेना। बाकी तुम्हारे लिए एक 24 घंटे केयरटेकर लगवा दूंगा, वो तुम्हारा ध्यान रख लेगी, आकाश ने सख्त आवाज में कहा। अपनी बात कहकर आकाश वहां से चला गया था। निशा के खुशहाल परिवार और आकाश के साथ रहने के सपने को एक पल में उसने चकनाचूर कर दिया था। उसके जाते ही निशा रोते हुए जमीन पर बैठ गई थी। इतने सालों में अभिमान ही उसका सहारा था और अब आकाश उसे भी उससे छीनने जा रहा था। निशा ने अपने सिर को घुटनों में रखा और रोते हुए कहा, आप सबका जिम्मेदार मुझे क्यों ठहरा रहे हो, जबकि मैंने कभी हमारी बुरी शादी के बारे में अभिमान को भनक तक नहीं लगने दी। मेरा बेटा भी मेरे लिए झूठ बोल रहा था कि आप अचानक कहीं से चले गए हो, जबकि मैं अच्छे से जानती थी कि वही जरूर हमें छोड़कर गया होगा। आप इस तरह अभिमान को मुझसे छीन नहीं सकते हो, वो मेरा सब कुछ है। अगर आज अभिमान इस परिवार में रह रहा है तो वो मेरी वजह से है। मैंने सबके ताने सुने और इतना सब कुछ सहा, इसलिए नहीं कि एक दिन आकर आप मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दो। आपको यहाँ हमारे साथ रहना होगा, मेरे लिए न सही, मेरे बेटे के लिए। उसे अपने पिता की जरूरत है और साथ में माँ की भी। सिर्फ अभिमान के लिए ही निशा ने अब तक अपनी जिंदगी में काफी कुछ सहा था। अभिमान अपने पिता से नफरत ना करे, ये सोचकर निशा ने हमेशा यही जाहिर किया कि आकाश अचानक कहीं गायब हो गया है, जबकि सच वो अच्छे से जानती थी कि वही जरूर उन्हें छोड़कर गया होगा। निशा अपने इतने सालों की मेहनत को इस तरह बर्बाद नहीं होने दे सकती थी। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में आशी अपने कमरे में थी। जब से अभिमान उससे शादी करने के लिए मना करके गया था, तब से उसने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया था। हालांकि आशुतोष ने उसे यकीन दिलाने की पूरी कोशिश की थी कि वो अभिमान को उसे छोड़ने नहीं देगा। आशी का मूड बुरी तरह उखड़ा हुआ था। वो सुबह के 11 बजे के करीब सोकर उठी। उठते ही उसने अपना मोबाइल चेक किया। जैसे ही आशी ने मैसेज चेक किया, उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। नहीं, मेरी किस्मत इतनी बुरी नहीं हो सकती है, आशी ने कांपती आवाज में कहा।